बीबीसी इंडिया बोल 11 मई दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। 2019 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बार बार जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को दी राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती। राहुल गांधी बोले, हार के डर से मोदी कर रहे हैं शहीदों का अपमान। राजीव गांधी को मुद्दा बनाने पर क्या सोचते हैं आप? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1811 7001 पर। बतौर मेहमान चर्चा में शरीक होंगी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से एक 5 सितारा होटल में हमले की खबरें आ रही हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 बंदूकधारी बलूचिस्तान के ग्वादर शहर स्थित पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में घुस गए हैं और होटल की पहली मंजिल से गोलियां बरसा रहे हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के कमांडोज ने होटल की इमारत को चारों ओर से घेर लिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने 26 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग बांग्लादेश छोड़कर मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जिन 26 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 22 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। इन सभी के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट थे। अभी ये साफ नहीं है कि ये पासपोर्ट असली हैं या नहीं। जिस बांग्लादेशी शख्स के घर से शरणार्थियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। म्यांमार में उत्पीड़न और हिंसा के शिकार लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी शिविरों में रह रहे हैं और उन्हें शिविर छोड़ने की इजाज़त नहीं है। यमन में हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो देश के 3 प्रमुख हिस्सों से अपने लड़ाकों को हटाना शुरू करेंगे। इससे यमन में चल रहे गृहयुद्ध को ख़त्म करने के लिए राजनीतिक बातचीत का रास्ता खुलने की संभावना है। यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकारी सेना के बीच पिछले 5 साल से भयानक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने यमन की आधी जनसंख्या को भुखमरी के कगार पर पटक दिया है। यमन में संयुक्त राष्ट्र की संयोजक लीजा ग्रांडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़कर यमन और यहाँ काम कर रही संस्थाओं की आर्थिक मदद करनी चाहिए। यमन में हो रहा मानवीय कार्य दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय कार्य है। इस साल की अपील के बाद हमें जरूरी फंड का सिर्फ 20% हिस्सा ही मिल पाया है। फंड की कमी से यमन में चल रहे हमारे सारे कार्यक्रम बंद होने की कगार पर हैं और अगर मदद नहीं मिली तो हमें राशन का वितरण रोकना पड़ेगा। अगर यमन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और एनजीओ से मदद नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी नैतिक असफलता होगी। ये थे यमन में संयुक्त राष्ट्र की संयोजक लीजा ग्रांडे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हुए एक धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में कम से कम 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बोगोटा के पश्चिम में बसे ला एस्त्रादा इलाके में हुए इस धमाके में एक घर के सामने का पूरा हिस्सा उड़ गया। आसपास की इमारतें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं जो पास के एक स्कूल में पढ़ते हैं। यहां रहने वाले एल्किन जिपोकॉन अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। मैं बस आधे घंटे पहले ही घर पहुंचा था। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और जब धमाका हुआ मैं अपनी कुर्सी से गिर गया। मेरी कुर्सी बुरी तरह हिल गई थी। मैं तुरंत उठा और उठकर अपनी पत्नी और बेटे को देखने पहुंचा कि वो ठीक हैं या नहीं। ये थे धमाके में बचे एक शख्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के उत्तर पश्चिम में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हुए हालिया संघर्ष में कम से कम 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस पर्यवेक्षक समूह का कहना है कि शुक्रवार को हुए इस संघर्ष में मारे गए ज्यादातर लोग या तो लड़ाके थे या फिर सुरक्षा बल। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। 2019 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बार बार जिक्र। चुनाव में राजीव गांधी को मुद्दा बनाने पर क्या सोचते हैं आप, इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811 7000 और 1811 7001। बतौर मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा जी स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
स्वागत तमाम श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक 5 सितारा होटल में हमले की खबर आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 बंदूकधारी बलूचिस्तान के ग्वादर शहर स्थित पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में घुस गए हैं और होटल की पहली मंजिल से गोलियां बरसा रहे हैं। स्थानीय मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर के जवानों और पाकिस्तान पुलिस ने होटल की बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप आ सकते हैं bbchindi.com पर। अब आगे बढ़ते हैं इंडिया बोल की चर्चा की तरफ। 21वीं सदी का 19वां साल और इस सदी में भारत का 4था आम चुनाव। देश के अगले 5 साल के लिए सरकार चुनी जानी है, वोटरों की नज़र भविष्य पर है, लेकिन बीच चुनाव में मुद्दों की दिशा अचानक बदलती दिख रही है। अतीत की बात शुरू हो गई है। साल 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी का नाम चुनावी मुद्दों में शामिल हो गया है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली से की। मोदी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं।
आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिशा नहीं बदली। इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी का नाम लेकर कांग्रेस को सीधी चुनौती दी, वो भी सुनिए।
हिम्मत हो तो आगे 2 चरण बाकी है। अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में, उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की रैली में भी राजीव गांधी का जिक्र किया, वहां आरोप अलग था।
कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान INS विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, INS विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे।
प्रधानमंत्री मोदी के हर बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के कुछ नेताओं के तेवर तीखे थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे मामले पर अलग अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने मोदी को गले लगाने की बात की।
देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर कल और आज एक शहीद व्यक्ति का अपमान करते हैं। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखिए मोदी जी, एक बात आप समझ लीजिए, आपके दिल में जितना भी गुस्सा हो, जितना भी क्रोध हो, जितनी भी नफरत हो, आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा।
लेकिन कांग्रेस ने राजीव गांधी को मुद्दा बनाने को लेकर अलग अंदाज में सवाल उठाए। सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को।
ये कहां आप बार बार दिवंगत लोगों के से लड़ने चले जाते हैं, जो जिंदा है उनसे लड़िए ना, रफेल पे चर्चा करिए ना, डिबेट करिए ना राहुल गांधी से, वो तो आपको बार बार चुनौती दे रहे हैं।
हम नीरजा जी से पूछेंगे कि राजीव गांधी का नाम अनायास ही प्रचार में सामने आ गया है या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मेरा नाम अशोक अनुरे मुक्कम पोस्ट गणेशवाड़ी तालुका सिरोही जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
जी अशोक जी, अपनी बात रखिए।
राजीव गांधी का जो उन्होंने कुछ अच्छा किया और कुछ, लेकिन वो अच्छा कुछ किया है उसका कोई बात नहीं करना चाहिए, अभी आगे क्या होना है वो दिख करना चाहिए।
जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं है, अब से 28 साल पहले यानी साल 1991 में एक आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राजीव गांधी का जिक्र किया तो कांग्रेस और दूसरे दलों ने यही कहा कि जो व्यक्ति जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। नीरजा जी, अब मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगा, आप इस पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को किस तरह से देख रही हैं?
देखिए, चुनाव 2019 में हो रहा है
जी,
चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया पिछले 5 साल में
जी।
चुनाव 80 के दशक के बारे में नहीं है, होना नहीं चाहिए। अब मुद्दे उठते हैं क्या कब हुआ, चुनाव के कैंपेन के दौरान उठने रहना चाहिए, लेकिन उसको फोकस बना देना कि 80 के दशक में क्या हुआ था, बोफोर्स में हुआ था, हालांकि राजीव गांधी को बरी कर दिया गया था उनकी मौत के बारे में इस केस में, खैर वो छोड़ दीजिए। ये बहुत ही अचरज की बात है कि सारा ध्यान भाजपा के कैंपेन का, शुरुआत ठीक की थी, हमने ये स्कीम की, ये प्रोग्राम किया, आंकड़ों से की थी, ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन बाद में पिछले हफ्तों में पूरा कैंपेन जो दिशा लिया है उससे बहुत हैरानी हुई।
हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं
और भाजपा की जो रणनीति थी हर सातों चरण के उन्होंने अलग अलग सोच के रणनीति बनाई थी, फोकस हर फेज का क्या होने जा रहा है। चौथे और पांचवे फेज में कुछ चीज़ें बदल गई हैं, तो क्या बौखलाहट हुई है कि चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं जा रही हैं जैसे कि सोचा गया था। दूसरा, हिंदुस्तान में आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ ये कि दिवंगत जो मृत आदमी है उसके बारे में इस तरह के शब्द यूज़ करना जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है,
नैतिकता की बात अलग है,
लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगता, सब ये जानते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें एक तर्क देती है कि मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में जब आप कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कांग्रेस ने चौकीदार को लेकर एक नारा गढ़ा, तो पूर्व प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगे थे उन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए, बार बार ये तर्क भारतीय जनता पार्टी की ओर से आता है
कि टिट फॉर टैट है
जी।
मतलब ये डैमेज कंट्रोल जो कुछ नेताओं ने करने की कोशिश की है, और ये सही है, मैं पुराने ओल्ड स्कूल को बिलोंग करती हूँ, मुझे भी ऐसा लगा चौकीदार चोर प्रधानमंत्री के बारे में करना जब मनी ट्रेल का कोई एविडेंस नहीं आया सामने, ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। लेकिन आप राहुल गांधी को कहिए ना चोर, आप उनके मृत पिता को क्यों कह रहे हैं जो कि अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते आज
जी,
और वो भी इलेक्शन के डिस्कोर्स में, और दसियों चीज़ें आप यूज कर सकते हैं अटैक करने को कांग्रेस को, लेकिन कहना कि राजीव गांधी करप्ट नंबर एक होके मरे, मतलब ये बहुत कड़े
जी, बहुत ही कड़े शब्द थे और जिसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं भी आई, हम इस बारे में
अच्छा नहीं लगा जी, किसी लोगों को अच्छा नहीं लगा इस चीज
जी को, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। निर्जा जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, एक श्रोता है, उनकी बात सुन लेते हैं।
डूंगरपुर हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
जी नमस्कार,
बहुत पुराना श्रोता हूँ आपका, बट आपके पास फोन करते हैं तो मिल नहीं पाता है
जी, लेकिन आज आपका फोन मिल गया है इसलिए अपनी बात रखिए।
धन्यवाद जी। मेरा कहना ये है
जी
कि एक दिवंगत आदमी पर कीचड़ उछालना ये तो कुछ कह नहीं सकता जी, ये बहुत छोटे आदमी की बातें हो सकती हैं
जी। आपको ऐसा लगता है, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं जी। अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
नमस्कार सर, मैं बीबीसी का बहुत पुराना श्रोता, 55 वर्ष पुराना
जी,
और आपको वात्सल्य बोल रहे हैं
जी। मैं वात्सल्य बोल रहा हूँ, स्वागत है आपका सर, अपनी बात रखिए।
सिद्धार्थ नगर यूपी से
जी।
ये दरअसल बात यह है कि यहाँ पर जो है राहुल गांधी, राजीव गांधी या कोई भी मुद्दा है ही, बीजेपी के पास या हमें लगता है कि किसी दल के पास, तो यहाँ पर मतलब जनता को चटकारे लेकर सुनने के लिए और आक्रोशित करने के लिए तमाम बातें उठाई जा रही है।
यानी इमोशनल मुद्दे में, कि इमोशनल इन्हें लग रहा है कि मुद्दा उठाया जा रहा है, जैसा नीरजा जी आपने कहा कि जो आरोप सामने आए हैं उनको लेकर भी सवाल उठे, और ये भी बताया गया कि बोफोर्स जो मामला था कोर्ट में, राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, बाद में वो केस ड्रॉप हो गया, दोबारा कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह मामला चल सके। INS विराट का जो मामला दूसरा था, उस मामले में भी लक्षद्वीप के जो पूर्व प्रशासक थे वजाहत हबीबुल्ला और INS विराट के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर रिटायर्ड वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं राजीव गांधी पर वो सही नहीं है, उन्होंने इन दावों को खारिज किया। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मोदी ने जिस मकसद से राजीव गांधी का नाम लिया था, क्या वो उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने भी बाद में उन पर आरोप लगाए, मॉब लिंचिंग जैसी बात भी की, और ये जो आखिरी के दो फेज हैं खासतौर पर दिल्ली और पंजाब, ये कहा जा रहा है कि ये बयान जानबूझ के इस तरह से लाए गए हैं कि इन दोनों फेज को ध्यान में रखा जाए।
देखिए, INS विराट की जो बात की गई, राहुल गांधी पर्सनल टैक्सी की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, हालांकि उसका खारिज किया गया है, लेकिन उसको लेके नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा दोबारा हावी हो, सामने आए जो बालाकोट के टाइम आया था, वो एक चेष्टा दिख रही है। 84 के जो सिख दंगे हुए उनको दोबारा उभारा गया है, वो भी एक चेष्टा है कि सिखों का वोट है पंजाब में, आपने जैसे कहा 19 को होगा, कल दिल्ली में भी सिख तादाद है, तो वो अपनी जगह है, आप यूज़ करें तो। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने शब्द किए
जी,
राजीव गांधी, वो कोई पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी कर सकता था अगर रणनीति का हिस्सा है। देश का प्रधानमंत्री इस तरह बोले फॉर्मर प्रधानमंत्री के बारे में, ये एक अलग ही चीज हुई है इस दौरान, इस
तो क्या लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जानबूझकर लेकर आए, या ये अचानक एक रैली में, हीट ऑफ द मूवमेंट में कई बार बातें निकल जाती हैं और बाद में क्योंकि वो बैकफुट पर नहीं जाते हुए दिखना चाहते हैं तो उन्होंने उसको आगे कंटिन्यू किया?
हालांकि नरेंद्र मोदी बहुत सोचे समझे तरीके से बोलते हैं, बौखलाहट में हो सकता है, लेकिन बहुत मेजर्ड हैं अपने शब्दों के साथ, समझ के बोलते हैं, तो मुझे लगता है रणनीति का हिस्सा हो सकता है, आक्रामक रवैया अपनाना, मुद्दों को दूसरी तरफ ले जाना, जो असली मुद्दे हैं वो गौण हो गए हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जो कि बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे देश में इस समय और सामने होने चाहिए थे,
और सरकार ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि चाहती है कि इन मुद्दों पर बात ना हो। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मैं फरीदुल हक अंसारी इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो उनको सिर्फ मुद्दे से हट के बात करना आता है, वो सही मुद्दे पे नहीं करते। उनको चाहिए था कि 5 साल में अपनी रिपोर्ट कार्ड बताते और नोटबंदी, GST और जितने वादे किए थे उस पे बात करते कि हमने ये किया हमको वोट दीजिए, हमने ये किया हमको वोट दीजिए। ये पिछली बातों को घुमा के उनके पास कुछ रह नहीं गया है, लोगों को इतना दिन तक धोखा दिए, झूठ बोले
जी,
झूठ के अलावा इतिहास में झूठ है और दुनिया भर का जितनी झूठ है
जी, ये एक आपका आरोप है जो आप कह रहे हैं, झूठ और सच की पड़ताल हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, तथ्यों के आधार पर होती है हर बात, उनकी झूठ भी नहीं हो सकती। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हेलो
जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ।
जी, हम रायबरेली से बोल रहे हैं।
जी, अपना नाम बताइए सर और अपनी बात रखिए।
कृष्ण कुमार सिंह, रायबरेली लालगंज।
जी,
हम ये बड़ी देर से जो है सुन रहे थे, स्लिप में जब आदमी के पास कोई मुद्दा बचता नहीं है तो आखिर में जो है वो इसी तरह के उलाहने देना शुरू कर देता है।
जी, आपको लगता है कि कोई मुद्दा नहीं है, इस तरह की बातें इसलिए लाई जा रही हैं? नीरजा जी, लगातार श्रोता इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है, जो आम चुनाव की जब शुरुआत हुई उसके पहले राहुल गांधी का एक बयान था कि हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे, जब वो प्रियंका गांधी को महासचिव उन्होंने बनाया उत्तर प्रदेश की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, तब उन्होंने कहा कि हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। लेकिन जब राजीव गांधी का जिक्र आया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डिफेंसिव होती हुई नज़र आती है। जब नरेंद्र मोदी ने अटैक किया राजीव गांधी का नाम लेकर, तो कांग्रेस के ज़्यादा नेताओं के बयान नहीं आए। जब एक राहुल गांधी का ट्वीट आया, प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, उसके बाद कांग्रेस के नेता थोड़े मुखर हुए। बोफोर्स का मामला भले ही राजीव गांधी पर साबित ना हुआ हो या दूसरे मुद्दे अलग अलग चुनाव उन पर हो चुके हों, लेकिन जब मुद्दों का जिक्र आता है तो कांग्रेस के आपको कुछ डिफेंसिव होती हुई नजर आती है और यहाँ यही टारगेट कर रहे थे मोदी?
देखिए, कांग्रेस कई बार बीजेपी की पिच पे खेलती है
जी,
और प्रधानमंत्री सफल हो जाते हैं कि हमारे टर्फ पे आके लड़िएगा वहाँ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने असली मुद्दों पे जहाँ उसने ध्यान आकर्षित किया था लोगों का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावों में, और जीती थी वो चुनाव, वो किसानों की दुर्दशा को लेके चुनाव लड़ा गया था, बेरोज़गारी को लेके, दो बहुत बड़े मुद्दों को लेके लड़ा गया था, लेकिन जितने भी इकोनॉमिक मुद्दे हैं कहीं ना कहीं इस बार गौण हो गए हैं।
इस बार कांग्रेस ये भी कह रही है कि हमने भी 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था।
अब वही है ना कि आप वो कुछ कह रहे हैं तो आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप एजेंडा नहीं सेट कर पा रहे हैं, ये कांग्रेस की कमजोरी है।
यानी वो उसी पिच पे बार बार जा रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी उनको ले जा रहे हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ।
जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
धन्यवाद। मोदी जी, राजीव गांधी जी का नाम इसलिए उठा रहे हैं कि मतदाताओं का ध्यान असली मुद्दों से हटाना चाहते हैं। उन्होंने नोटबंदी करी, 120 लोग मर गए, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। बेरोजगारी है, विकलांगों की समस्याएं हैं, वो हल नहीं हो रही है, आज तक हल नहीं हुई। विकलांगों को दिव्यांग शब्द तो दे दिया मोदी जी ने, लेकिन दिव्यांग नाम देने से क्या होता है? काम करके दिखाइए,
काम करके दिखाना चाहिए, इनका ये कहना है। और एक और जी, एक और श्रोता हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हाँ, ये नमस्कार साहब, बड़ा अच्छा लगा आप लोग इस पर अरेंज कर रहे हैं
जी।
और आपको मतलब ये बात्सल्य जी और निर्जा चौधरी जी, जो इससे सब लोगों को धन्यवाद
जी।
हमारा कहना है साहब कि ये जो मतलब ये एक बड़े भाई का जो रोल होना चाहिए, जो पावर में रहता है एक फैमिली के अंदर, तो उसको एक अच्छी दिशा देनी चाहिए और एक स्वस्थ वातावरण बना कर कर करके। लेकिन जो मोदी जी का व्यवहार है और जो जिस तरह से वो लो स्टेज पर ले जा कर कर करके ये करते हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब जैसे एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, राजीव गांधी का तो उन्होंने बता दिया, लेकिन राजीव गांधी जो अटल जी का मतलब ये था
जी। हमारा संपर्क इनसे कट गया है, ये अपनी बात कहना चाह रहे थे, कुछ और रेफरेंस बताना चाह रहे थे नीरजा जी। लेकिन एक बात भी बड़ी दिलचस्प कही जाती है कि नरेंद्र मोदी जी जब इतिहास का जिक्र करते हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, चाहे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हों जवाहरलाल नेहरू, उनका जिक्र करें, शिमला समझौते को लेकर वो इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने एक तरीके से जो बढ़त थी वो गंवा दी गई, राजीव गांधी का उन्होंने जिक्र किया। इतना ही नहीं, जब वो महात्मा गांधी की बात भी करते हैं तो कांग्रेस मुक्त उनके नारे की बात करते हैं, साथ में जब सरदार भगत सिंह की बात करते हैं तो भी वो इतिहास का जिक्र अपने हिसाब से करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे उन्हें कुछ फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र आता है? क्योंकि रिएक्शंस जो हैं अभी तक हमारे श्रोताओं के वो कुछ अलग हैं, लेकिन जो जिस तरह से उनके चुनाव के नतीजे आते हैं वो कुछ अलग दिखते हैं।
देखिए, ये तो हर नेता की खूबी है कि आप सिलेक्टिवली यूज़ करके अपनी अपनी रणनीति को आगे करें
जी।
तो मैं उसको एक कमज़ोरी नहीं मानूंगी, एक तो स्किल है ये, आप उसे अग्री करें डिसएग्री करें। अब कांग्रेस ने, इन्होंने फॉर उदाहरण के तौर पे 1984 का उदाहरण दिया, फिर से दोबारा उसको आगे किया उनके नेताओं ने। अब सैम पित्रोदा ने जो बोल दिया, हुआ तो हुआ
जी।
अब ये कांग्रेस, यही कांग्रेस की नादानी है जिससे कांग्रेस मुंह की खाती है कई बार।
कहते हैं कि मुझे उसका ट्रांसलेट करना नहीं आया, मैं कहना चाहता था जो हुआ बुरा हुआ।
हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा उसको लाचौन कर दिया प्रधानमंत्री में, अब तो बार बार उसी को वो कहे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, प्रधानमंत्री का राजीव गांधी, दिवंगत राजीव गांधी के बारे में जो शब्द बोले हैं, मुझे लगता है पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हम सबको छोटा महसूस करवाती हैं
जी। हमारे एक साथी हैं कार्टूनिस्ट कीर्ति शाप, उनके अक्सर कार्टून देखती होंगी, उन्होंने एक कार्टून अभी बनाया इसी मुद्दे को लेते हुए कि जहां उन्होंने राजीव गांधी की एक रैली, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी की एक रैली का दृश्य दिखाया जहां जनता है वो मोदी 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 के नारे लगा रही है और मोदी जी खुद राजीव 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 कह रहे हैं, तो बड़ा एक अच्छा उनका कार्टून था। फेसबुक पर भी हमें कई सारी टिप्पणियां मिली हैं इस मुद्दे पर, उनमें से कुछ कमेंट को मैं पढ़ देता हूं। शेख शहजादा लिखते हैं कि जब आदमी लगातार दूसरों की बुराई करे तो समझो कि वो अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। संजय मिश्रा लिखते हैं कि बिल्कुल सही है, जब कंप्यूटर राजीव गांधी लाए इसकी चर्चा होगी तो 1984 की भी चर्चा होगी और उसमें उनके योगदान की भी चर्चा होगी। मोहम्मद अली खान की राय है कि काम कुछ नहीं किया, राम का नाम चला नहीं, अब दूसरे को बदनाम करके फिर आने की सोच रहे हैं। डीके सैनी लिखते हैं कि चर्चा तो होनी चाहिए, आज तक जनता को अंधेरे में रखा गया, जनता को भी सच जानने का हक है। तो जो बातें सामने आई है नीरजा जी, एक पक्ष उसमें ये भी है, वो लोग कहते हैं कि सच तो लोगों के सामने आना चाहिए, जो मुद्दे हैं उन पर जिक्र होना चाहिए, इतिहास में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उन पर भी बात होनी चाहिए।
होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए
जी,
उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो 10 साल पहले 20 साल पहले, पर ये नहीं कि आपके टर्म को डिस्कस करने की बजाय आप सिर्फ 20-30 साल पुरानी चीज़ों को ही करेंगे, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये शंका तो मन में पैदा होती ही है कि क्या आप असली मुद्दों से ध्यान को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश
कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी कितनी मिलेगी, इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन एक श्रोता और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं।
हेलो
जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हाँ, मैं प्रदीप पांडे अमेठी से बोल रहा हूँ।
जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
जी, मैं वैसे तो भाजपा का समर्थन करता हूँ, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण पद पे हैं, ऐसी गलत बात कर रहे हैं। जो दिवंगत नेता हैं, लोकप्रिय नेता थे, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए।
जी, अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। एक और श्रोता है हमारे साथ, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी जी जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हाँ जी, मैं अब्दुल अजीज बात बोल रहा हूँ जी, जम्मू से।
जी, आप अपना अगर रेडियो बंद कर लेंगे तो आपकी आवाज ज्यादा बेहतर सुनाई देगी हमें।
हेलो
जी जी, आप अपनी बात रखें।
मैं अब्दुल अजीज बात बोल रहा हूँ जी, जम्मू से। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में खुद ये मौका देते हैं दूसरे को कि उनके बारे में बात की जाए, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के अभी शुरू कर दिया। पिछले 16-20 साल में राहुल गांधी को बोलना नहीं आता था, तो ममता बनर्जी ने इनको कहा कि तुम सिर्फ गालियां देते रहो और मोदी को और चोर चोर कहते रहो, तो उस गुस्से में आकर सब कुछ सामने आ जाता है।
जी निर्जा जी, बट साहब की भी एक राय है, इन्होंने अपनी राय रखी कि कांग्रेस खुद मौका देती है। लेकिन दूसरा, आपने जैसा कहा कि ये जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, तरीका भले ही जो भी हो, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश आपको लग रही है, तो क्या इसमें कुछ कामयाबी मिलती दिखती है आपको प्रधानमंत्री को?
पूरा जो डिस्कोर्स है वो इसी के आसपास घूम रहा है पिछले 2 सप्ताह से।
जी,
अगर नौकरियों पे क्या बात हुई है, कितनी बात हुई होगी, 5% भी बात हुई है, सामने नेता लोग लाए हैं क्या, इन्हीं पे इमोशनल मुद्दों पे सारी चर्चा जारी है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का रिस्पांस अच्छा रहा है, बहुत नपातुला, बहुत सुलझा हुआ रिस्पांस था इस चीज़ को लेके, गुस्से वाला रिस्पांस नहीं था। लेकिन आपके श्रोताओं के रिएक्शन से तो लग रहा है लोगों को ये अच्छा नहीं लगा
जी,
पर क्या उनका वोटिंग पैटर्न बदलेगा इस द्वारा,
जी
कह नहीं सकते।
जी, वोटरों का क्या मूड होगा इसके बारे में कह नहीं सकते। एक और श्रोता है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं कि कोई इसके खिलाफ कोई ऐसा कड़ा कानून बन सकता है, जैसे चुनाव आयोग से या किसी और से कोई।
जी, चुनाव आयोग तो नजर रखता है, लगातार शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन इस बयान पे तो खास तौर पर प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिल गई है। जी, मैं बस एक आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगा नीरजा जी, अब प्रचार का केवल आखिरी दौर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि असली मुद्दों पर अब कुछ बात होती दिखेगी या प्रचार के बाकी के दिन भी इसी तरह निकल जाएंगे? 17 तक ही प्रचार है।
मुझे नहीं लगता है, आखिरी दो जो चरण है ना, ये बहुत अहमियत रखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अहम है, क्योंकि महागठबंधन यहाँ बहुत स्ट्रांग है
जी,
भाजपा के लिए क्रिटिकल होंगे, तो मुझे नहीं लगता है जो कि तेवर उन्होंने अपनाए उससे कुछ अलग होगा,
कुछ बदलेगा। बहुत शुक्रिया नीरजा जी आपका चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और चलते चलते सिंधु वासनी से जान लेते हैं पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसका अपडेट।
बीबीसी समाचार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक 5 सितारा होटल में हमले की खबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 बंदूकधारी ग्वादर शहर स्थित पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में घुस गए हैं और होटल की पहली मंजिल से गोलियां बरसा रहे हैं। होटल के कुछ कर्मचारी अभी होटल के अंदर हैं, हालांकि मेहमानों को बाहर निकाल लिए जाने की बात कही जा रही है। बीबीसी समाचार।
इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए आप आ सकते हैं bbchindi.com पर। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे होगी। नमस्कार भारत में। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।